ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 अक्टूबर 1975। पश्चाताप की श्रृंखला में आज की बाबा की ये वाणी। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकारी देहरूपी सांप को टच करना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना, चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन मन धन से सेवा की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से, इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह पांचवी मंजिल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते, वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे। अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी यह कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानी करने वालों को बाप दादा वार्निंग दे रहे कि आज से इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो क्या होगा। बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। तो व्यक्तवाणी है बाबा की 75 की अक्टूबर मास 26 तारीख। तो क्या सुना, कोई भी देहधारी में संकल्प से फंसना एक, कर्म से फंसना दो, देह रूपी सांप को टच करना अर्थात पांच बातें होगी। किसकी पांच बातें होगी, किसी भी देहधारी में संकल्प से फंसना, किसी भी देहधारी में कर्म से फंसना और तीसरा शरीर रूपी सांप को टच करना। तो क्या क्या होगा इसकी वार्निंग, इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम, घातक प्रभाव क्या होगा, इसकी चर्चा यहाँ पर बाबा ने की है। आज सुबह भी क्या कहा था, किसी भी देह में नाम रूप में फंसो नहीं। शरीर का क्या पता, आज है कल नहीं, आज मम्मा गई कल तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। रोने की दरकार नहीं, दुख करने की आवश्यकता नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो किसी भी देहधारी में संकल्प से फंसना, दूसरा कर्म से फंसना, और तीसरी बात देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात पांच बातें होगी। सबसे पहला कमाई नष्ट हो जाएगी, चाहे किसी ने कितना भी ज्ञान का चिंतन किया, एक चाहे किसी ने कितनी भी शक्ति अपने अंदर भरी हो, तो चाहे किसी ने तन मन धन से कितनी भी सेवा की हो, कितनी भी कमाई की हो, परंतु किसी में फंस गए व्यक्ति में संकल्प से, विचारों से, कल्पना से, भावनाओं से, तो क्या होगा? ये सारी जो कमाई है, इनकम, फिनिश, समाप्त। ये एक बात। दूसरा परिणाम, किसी भी देहधारी में फंसना, अर्थात रजिस्टर पर काला दाग। पहला इनकम से संबंधित, दूसरा रजिस्टर पर काला दाग। कौन सा दाग? दाग अर्थात स्मृति, याद, कलंक। वो जो स्मृति रहेगी बहुत पीड़ित करेगी, खींचेगी बार बार, तो रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाएगा। सफेद कागज पर जैसे काला दाग दिखाई देता है एकदम, वैसा होगा। तो किसी भी देहधारी में फंसना, अर्थात सफेद कागज पर काला दाग। तीसरा, जैसे योग की शक्ति से क्या करते हो, विकर्मों को दग्ध करते हो, वैसे ही विषय भोग भोगने की अग्नि सारे पुण्य कर्म को भस्म कर देगी। तीसरी चीज होगी, अब तक के किए हुए सारे पुण्य भस्म। ये काम की अग्नि है, वो योग की अग्नि है। योग की अग्नि विकर्म को भस्म करेगी और काम की अग्नि सभी पुण्य कर्म को भस्म कर देगी। तो तीसरी बात जो होगी, वो सारे पुण्य भस्म हो जाएंगे। चौथा, चौथी पांचवी मंजिल से गिरना, किसी में फंसना, अर्थात क्या हुआ, पांचवी मंजिल से गिरना, हड़गुड़ टूट जाएगी। और पांचवा, कड़ी सजा खानी पड़ेगी। उदाहरण दिया बाबा ने उन बच्चों का जो कहते हैं अभी पश्चाताप का रूप नहीं है, अभी साधारण रूप से कहते हैं कि हमने चार पांच बार कर दिया है और लक्ष्य भी रखा है कि मंजिल बहुत ऊंची है, ये तो होता ही है। बाप दादा ऐसे बच्चों को ऑफिशियल वार्निंग देते हैं कि इसे साधारण नहीं समझना, कड़ी भूल समझना, पश्चाताप करना, नहीं तो बहुत कड़ी सजा खाने के अधिकारी बनेंगे। तो ऐसी पांच बातें बाबा ने कही है। कौन सी ये बातें हैं? यदि कोई किसी देहधारी में फंसता है, किसी के नाम रूप में फंसता है, और एक बात देह रूपी सर्प को स्पर्श करता है, टच करता है। ये जो टच है, ब्रह्मचर्य की आठ बातों में दूसरी बात स्पर्श को रखा है। स्पर्श अर्थात वहां पर ब्रह्मचर्य खंडित होगा। एक है प्रेक्षण, पहला प्रेक्षण अर्थात देखना, शरीर को देखना। दूसरा है उसे प्रेक्षण या दर्शन। दूसरा है स्पर्श। ब्रह्मचर्य की आठ बातों में यह दूसरे नंबर पर रखी हुई बात है। तो बाबा कह रहे हैं ये देह है, इसको क्या समझो, सांप, इसमें फंसना नहीं, इसमें आकर्षित नहीं होना, इसको टच करना अर्थात ये पांच बातें हो जाएगी। किसी देह में फंसना अर्थात पांच बातें होगी, किसी की तरफ आकर्षित हो जाना। ब्राह्मणों ने शायद वो देह का आकर्षण छोड़ दिया है, पर ब्राह्मण भी एक दूसरे में फंसते हैं। कैसे? विशेषता है, किसी में कोई विशेष गुण है, कोई कला है, उसमें फंस जाना। किसी का चिंतन ही अच्छा है, उस चिंतन छोड़कर उस व्यक्ति में फंस जाना। कोई अच्छा योगी है, उस योगी में फंस जाना। कहीं पर भी फंसना हो सकता है। किसी की कोई बात अच्छी लगती है, उसमें फंस जाना। तो चाहे किसी तरह का भी फंसना हो, संकल्प से, भावना से, बौद्धिक रीति से, इंटेलेक्चुअल अटैचमेंट। किसी की बुद्धि बहुत अच्छी है और हमारे बहुत सारे काम हम उसकी बुद्धि के द्वारा कराते हैं, उससे मदद लेते हैं बार बार, वो भी एक फंसना है, वो भी एक अटैचमेंट है। तो अटैचमेंट या फंसना, ट्रैपिंग, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, मॉरल, सोशल, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल, सबसे पहला फंसना ऐसे क्या होगा, पुण्य, अब तक की हुई कमाई समाप्त। ज्ञान और योग के इस मार्ग में जो आत्मा सूक्ष्म कमाई करती है, पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की, पुण्य कर्म की, वो विकार के एक आवेग से समाप्त हो सकती है, क्षणिक क्रोध से समाप्त हो सकती है, इसलिए अपनी कमाई की चिंता रखनी है कि वो कौन सी चीज है जो की हुई कमाई को नष्ट करती है। हमें तो सबसे पहले कमाई बढ़ानी है। अगर ऐसे कर्म सारे दिन भर चालू है तो कमाई कम हो जाएगी। आज की मुरली में क्या बोला, लड़ना झगड़ना, एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए तुम्हारी दिनचर्या की, दैवी होनी चाहिए, शांत स्वरूप दिखने चाहिए, हर्षित दिखने चाहिए, दुखी नहीं होने चाहिए, आंसू नहीं निकलने चाहिए। आंसू निकले अर्थात पप्पू भाई क्या क्या कहेंगे, नापास, नापास। मम्मा चली गई क्या बाबा मुरली चलाना बंद कर देते हैं? मुरली तो चलाते रहेंगे। ये मुरली 25 तारीख की है, जून की 26 और 65 की हिस्ट्री हॉल। और अभी अभी प्रभाकर भाई बता रहे थे, मुरली जब चल रही थी तब मम्मा का मृत शरीर वहीं रखा हुआ था पीछे, और फिर ये मुरली चल रही थी कि मम्मा चली गई तुम भी जाओगे, बचेगा कोई नहीं, कौन रहा है, सबको जाना है। और पुरुषार्थ ही हम इसलिए कर रहे हैं कि खुशी खुशी शरीर छोड़े, तो दुख की तो कोई बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं, गम की कोई बात ही नहीं, शोक की कोई बात ही नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं, फिक्र की कोई बात ही नहीं। बाप फिक्र करता है क्या? बाप सब कुछ साक्षी होकर देखता है, तुम भी सब कुछ साक्षी होकर देखो। जाना तो सबको है, जिन रोया तिन खोया। आंसू किस लिए फिर? तो फंसना, अटैचमेंट हो जाना सूक्ष्म, फिर युवा आत्मा यदि शरीर छोड़ती है तो फिर दुख बहुत होगा, दर्द बहुत होगा, पीड़ा होगी। बाबा ने कहा अच्छा है ना, वो आत्मा तो अभी कोई नया पाठ बजाने गई है, वो तो कहीं बच्चा बन गई है, और कभी कभी बच्चे भी दूसरों को सुख देते हैं। तो किसी देहधारी में फंसना, किसी के नाम रूप में फंसना, देह रूपी विष को टच करना, अर्थात सबसे पहली बात होगी क्या, पुण्य सारे, कमाई सारी खत्म, कमाई नष्ट, इनकम गॉन। जबकि थोड़ी थोड़ी इनकम करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। दूसरी बात रजिस्टर में दाग। ब्राह्मण जीवन का ये रजिस्टर बेदाग हो, विकार का कोई भी दाग वहां ना हो, या फिर यदि है तो आप क्या करें? ब्राह्मण जीवन के रजिस्टर में दाग है, अब क्या करें, कैसे मिटाएं इन दागों को? ब्लॉट्स, ब्लेमिश, कलमश, कलंक, क्या किया जाए? दागों को कैसे मिटाएं? ये कागज है, इसमें दाग है, क्या करेंगे दाग को मिटाने के लिए? रबर चाहिए, रबर से मिटाना, और व्हाइटनेस, और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पन्ना ही फेड़ दो, फाड़ दो, वो पन्ना हमारी, हमारा जीवन है, उसमें वो कागज दाग है। हाँ, जीवन की किताब का उस पन्ने को हम फाड़ सकते हैं, पर फटेगा नहीं, पर विस्मृत तो हो जाएगा। ब्रह्मचर्य के खंडन में एक चीज बताई है, स्मरण। स्मरण करना पुराने भोगों को, स्पर्श को, यह भी खंडन है, उन यादों को याद करना, तब के भोग, अभी नहीं है वो, परंतु पास्ट के है, अतीत के है, उन सबको स्वप्नव्रत समझना, नश्वर समझना, अतीत के समझना, दुख के समझना, छाया समझना, परछाई थी वो सारे भोग, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं, झूठ था वो, मिथ्या थे वो, भ्रम था, इल्यूजन था। जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था, सब कुछ स्वप्नव्रत, अर्थात सब कुछ बीत चुका, बीते हुए भोग की स्मृतियां, बीती हुई यादें, बीते हुए स्पर्श, वो साथ, वो संग, वो हंसी मजाक, वो सारा कुछ स्वप्न था, अब उसको याद नहीं करना है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी इसको कहा जाता है, नैष्ठिक अर्थात निष्ठावान, जिसने व्रत ही ले रखा है ब्रह्मचर्य का। अब तक का जीवन मलिन था, विकारी था, पतित था, और अचानक ब्रह्मचर्य का संकल्प आया, ब्रह्मचर्य के मार्ग में चल रहा है, परंतु पुरानी यादें पीछा करेगी, पुराने भोग अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए वो सारी वस्तुएं जो उन चीजों की याद दिलाए, योगी हटा दे, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आंखों के सामने से ही हटा दो तो मन से भी हट जाएगी। आंखों के सामने अगर चीजें हैं रखी हुई, तो वो चीजें उस व्यक्ति की याद दिलाएगी, वो वस्तुएं उन विचारों को फिर से लाएगी। छोटी से छोटी वस्तु, वो सुगंध हो सकती है, जो पुरानी स्मृतियों को जगाते भोग की। इसलिए दूसरी बात क्या कही, रजिस्टर पर क्या हो जाएगा, दाग। अगर है तो अभी क्या करना है, उसको याद नहीं करना पहली बात, उसके लिए दुख करना, उसको साक्षी होकर देखना, उसे स्वप्नप्रद जानना, उसे मिथ्या समझना, मायामयी समझना, छाया थी वो, शैडोज थे और चले गए, ये दूसरा। उसके लिए उसको देखकर योग नहीं करना है, योग करते करते वो सारी स्मृति अपने आप खत्म हो जाएगी, अशरीरी अवस्था में सारा कुछ डिलीट हो जाता है। आत्मा जब परम धाम में स्थित होती है, अशरीरी होती है, और जैसे ही आत्मा है तो यहां वहां तो नहीं जा रही है, परंतु ये स्मृति कि हम वहां है, और उस निर्विचार अवस्था में, निर्संकल्प स्थिति में, ब्रेन की बहुत सारी जो न्यूरल पाथवेज है सब धीरे धीरे डिलीट हो जाती है, यादें, फिर याद नहीं रहता है कुछ। और दूसरा नया भरना है, क्यों भरना है, क्यों भरना है दिलीप भाई जी, क्यों भरना है आज के वरदान से? नहीं भरेंगे तो खड्डा रह जाएगा, और खड्डा रहेगा तो गिरेंगे, और गिरने के बाद फिर मोच, जो खाली है और जो कमजोर है उनको संकल्पों की मोच आएगी, थॉट स्प्रेन, इमोशनल स्प्रेन, इमोशनल फ्रैक्चर्स। चार स्टेज बताइए, भरे नहीं है, गड्ढा रह गया, गिरे, फॉल, और फिर मोच। मोच से मुक्ति का मार्ग, भरे रहो, गड्ढा नहीं, गिरेंगे नहीं, मोच नहीं। खाली यदि है तो गड्ढे में गिरेंगे, कमजोर गिरेंगे। इसके लिए रजिस्टर पर क्या हो, कोई भी दाग ना हो, ये दूसरी पॉइंट। तीसरी, पुण्य सारे भस्म हो जाएंगे, जैसे योग की अग्नि से सारे विकर्म भस्म होते हैं, वैसे विषयी विकारी भोग, भोगने की इच्छा से, अग्नि से सारे पुण्य के खाते भस्म हो जाएंगे। इच्छा, और पहले इच्छा मन में आती है, पहले व्यक्ति मानसिक भोग करता है और फिर वो कर्म में आता है, सेंशुअल फैंटेसीज मन से। तो तीसरा है सारे पुण्य, संगम युग पुण्य जमा करने का युग है, और यदि हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, सूक्ष्म पुण्य बनते भी सूक्ष्म है और नष्ट भी सूक्ष्म रीति से होते हैं, और जब जब पुण्य नष्ट होंगे अंदर ही अंदर दुख रहेगा, एक खालीपन का अनुभव होगा। आत्मा की स्थिति ऐसी हो, स्थैर्यम, आज की मुरली में कहा तुम बेहद के बुद्धिमान हो, आज का है ना, तुम्हारी स्थिति कैसी रहनी चाहिए, स्थैर्यम, तुम बेहद के बुद्धिमान सयाने हो, तो 24 घंटे में किसी भी समय पर आत्मा की स्थिति भरपूर हो, क्योंकि जिस समय खाली होगा गड्ढा, फॉल और मोच। मोच लगने के बाद क्या करते हैं, पहले रेस्ट, दूसरा पेन किलर, पट्टी, क्रेप बैंडेज, बाम लगाओ, क्रेप बैंडेज लगाओ, हॉट फोमेंटेशन, सेक। तो विचारों में जब मोच आ जाए तो भी ये करना पड़ेगा, पहले रेस्ट, मौन में जाना पड़ेगा, एकांत में जाना पड़ेगा बीच बीच में, कि ये चोट क्यों लगी, क्यों हर्ट हुई आत्मा, क्यों दुखी हुई आत्मा, कहां खालीपन था, जरूर कोई एक्सपेक्टेशन थी किसी से जो उसने पूर्ण नहीं की, एक दूसरा क्रिप बैंडेज या मरम पट्टी या बाम या कुछ लगाना पड़ेगा। कौन सी क्रिप बैंडेज? चिंतन की, ज्ञान की। थोड़े से पेन किलर देने पड़ेंगे। कौन से पेन किलर? नथिंग न्यू का पेन किलर। अच्छा, और कौन सा पेन किलर? पास्ट इज पास्ट। अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अशरीरीपन का इंजेक्शन से ही वो जाएगा। और थोड़ा सा हॉट फोमेंटेशन, गरम सेक करना पड़ेगा। कौन सा गरम सेक? कौन सा गरम सेक? योग का गरम सेक, स्वमान का गरम सेक, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर तो जैसे वहां स्प्रेन होता है तो ये करते हैं, यहां स्प्रेन होने के बाद ये सब करें। कभी कभी स्प्रेन नहीं होता है, सीधा फ्रैक्चर होता है, तब तो लंबा समय तो रेस्ट करना पड़ता है। तो तीसरी बात है क्या? पुण्य समाप्त। चौथी, पांचवी मंजिल से नीचे गिरना, और गिरने के बाद फिर उठना मुश्किल है। जो एक व्यक्ति बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है, जब गिरता है फिर से वही पुरुषार्थ करना मुश्किल हो जाता है। फिर वो खाली कहना रह जाता था कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ पहले करते थे, हम पहले 2 बजे उठ के करते थे, अब क्या हुआ? हम लोग पहले रात रात भर भट्टी करते थे, अब क्या हुआ? हम लोग पहले बहुत अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करते थे, अरे अब क्या हुआ? हम लोग दिन रात लगे हुए रहते थे पुरुषार्थ में, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो और बढ़ना चाहिए। जो मधुबन निवासी है उनको कुछ बातें याद रखनी है। पहली, संगम युग चल रहा है। दूसरा, हम आबू में हैं। तीसरा, हम मधुबन में हैं। चौथा, मधुबन में हेड, मधुबन में अर्थात हेडक्वार्टर्स, मधुबन में अर्थात हेडक्वार्टर्स। अगला, ये समय तपस्वी बनने का है, भोगी बनने का नहीं। व्यर्थ के जश्न, व्यर्थ के सेलिब्रेशंस, व्यर्थ के भोग, व्यर्थ के नाम मान शान के लिए की गई सेवाएं, ये सब के लिए नहीं है। तपस्या करनी है, और वो भी गुप्त। मैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों हम यहां हैं? सब कुछ छोड़कर, संसार की सारी चकाचौंध छोड़कर यहां क्या कर रहे हैं? जंगल में बाबू तो जंगल ही है ना, किस लिए आए थे? तप करने आए थे, तपाने आए थे, तपस्वी बनने आए थे, और इंद्रियों ने हमको खींचा है, इंद्रिय रसों ने खींचा है। संसार में भक्ति मार्ग या जो तपस्वी होते हैं वो एक तपस्या करते हैं आंख पर पट्टी बांधकर की हुई तपस्या। सारे दिन भर आंख में पट्टी बंधी हुई है, बीच बीच में खोलेंगे। क्यों? क्योंकि आंखें यहां वहां जाती रहती है। कमरे में रहेंगे तो अभ्यास करेंगे, आंख बंद पट्टी बांध लो, और फिर बिना आंख के, क्योंकि पता तो है सब कहां कहां है, फिर अभ्यास करना। यहां सोना है, यहां चार्जर है, यहां मोबाइल है, पट्टी बंधी हुई है। आंखों का रस है, आंखों में आंखें देखना चाहती है कुछ कुछ। कुछ समय के लिए आंखों का दमन रोक देते आंखों को, कानों का भी बस पट्टी बांध देते, कई कई लोग योग शिविरों में ऐसा करते हैं, तीन तीन दिन का उनका तपस्या शिविर होता है संसार में, तो भी उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको पट्टी बांधनी और नीचे जो दिखेगा छोड़ा बस उसके आधार पर उतना देख के चलना है, थोड़ा जो दिखेगा उससे, क्योंकि आंखों में रस है। एक तो ये बात बताई जाती है, दूसरी भोजन को एकदम अल्प कर दो, क्योंकि सबसे गहरी जो इच्छा है आत्मा की, काम से भी अधिक, वो भोजन की है। भोजन में अगर कुछ कर दो तो सारा सिस्टम हिल जाता है, सारा सिस्टम हिल जाता है चेतना का। शरीर की बात तो हम बात नहीं कर रहे, आत्मा की बात कर रहे हैं। उसके पास ऑप्शन तड़फड़ाने लगती है वो, क्या करूं, उसको अल्प कर देना, तपस्या अल्प आहार में की जाती है, परिमित आहार में की जाती है। थाली भरकर भोजन और उसके बाद में अशरीरी, कैसा विरोधाभास है। आज क्या था, पानी पूरी। वो कौन से दादा थे, विश्व किशोर या आनंद किशोर, विश्व रतन, जिन्होंने आइसक्रीम की बात किसकी है, आनंद किशोर दादा। जब नया नया फ्रिज आया था मुंबई में तो सबके लिए आइसक्रीम बना था और सबने बहुत अच्छे से आइसक्रीम खाया। बाबा ने पूछा, बच्चे बाबा की याद में आइसक्रीम खाया क्या, तो बाबा कौन, विश्व आनंद किशोर दादा। आनंद किशोर बाबा ने कहा, बाबा हम तो भूल गए, तो अभी ऐसा करो फिर से आइसक्रीम खिलाओ ताकि हम बाबा की याद में खाएंगे। अभी तो एक पानी पूरी कल हो जानी चाहिए, आज जो भूल गए बाबा की याद में खाने खा करने, वो कल फिर खाएंगे। तपस्या अल्प आहार में की जाती है, नहीं तो शरीर के रस खींचते हैं। तपस्या अर्थात शरीर से अलग हो जाना, ये शरीर उधर और मैं इधर, मेरे रस इस शरीर में नहीं है, आत्मा के रस, आत्मा में असीम आनंद का झरना बहने लगता है जब रसों से ऊपर जाती है, जिसका कोई वर्णन नहीं है। आनंदपुरी में आत्मा बहने लगती है, पानी की पुरी में नहीं। पारसपुरी, पानीपुरी से पारसपुरी। तो चौथी बात है पांचवी मंजिल से गिरना, हड्डियां टूट जाती है, फिर उसके बाद हिम्मत खत्म हो जाती है चढ़ने की, और फिर दूसरों को चढ़ता हुआ देखते और दुखी होते हैं, और फिर अपने आप को बचाने के लिए, ये तो हमारा काम नहीं है, जिनको बनना है बने, हमने पहले बहुत कर लिया है और हमारा बहुत जमा है, पर अंदर से दिल टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है हार्ट का। और लास्ट बात बताई दंड, क्या कहते हैं बाबा से, बाबा चार पांच बार हो गया, साधारण रीति से कहते हैं, पश्चाताप का रूप नहीं है कहते समय, बस ऐसे ही कह रहे हैं, कड़े दंड के अधिकारी बनेंगे। फिर से एक बार पढ़ रहे हैं, क्या क्या सुना, कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना, इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना, तीन बातें बताई, संकल्प से फंसना, कर्म से, इतनी कर्म से इतना कांटेक्ट बढ़ा रहा है, उतना कांटेक्ट बढ़ा रहे, फैमिलियरिटी बढ़ रही है, उतनी आवश्यकता नहीं है, और नाम सेवा का हमने चिपका के रखा है ऊपर ताकि कोई कुछ कहे नहीं, पर फैमिलियरिटी बढ़ गई, क्यों बढ़ानी है, क्यों बात करना है, क्यों वार्तालाप को खींचना है, और उसमें भी स्त्री और पुरुष, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, किसी भी एक स्थान पर अकेले लंबा समय बैठना या लंबा समय बात करना अपोजिट पोल से ध्रुव है, आकर्षण उत्पन्न करेगा, खींचेंगे, मिस करेंगे वो अगर नहीं है तो, और सूक्ष्म गिरना चालू हो जाएगा। अर्थात अपनी की हुई, पहली बात बता रहे अभी, अब तक की हुई कमाई को खत्म करना है, चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की, बहुत सारी मुरलियां पढ़ी, ज्ञान का चिंतन किया, मनन किया, चर्चा की, क्लासेस की, कराई, चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव, याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की, कितना ही 2 बजे उठकर योग किया और शाम को योग किया और दिन भर योग किया और भट्टिया की और कराई, या तन मन धन से सेवा की हो, बहुत सेवा की, तन से भी की, धन से भी की, मन से भी की, मनसा सेवा भी बहुत की, धन से भी की और कर्म से भी की, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से क्या हो जाएगी? इस सांप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है, वैसे ही यह सांप भी, अर्थात देह में फंसने का विष, सारी कमाई को खत्म कर देगा। और यह टच करना हाथ से टच करना नहीं है, खाली संकल्प से और नजर से टच करना। अव्यक्त वाणी है, महावाक्य है बाबा से, देह रूपी सांप को संकल्प से और नजर से टच करना, अर्थात क्या महा 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 पाप, एक जगह बोला है। तो यह हो गई पहली बात। फिर है पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाना, जो कमाई की थी, जो रजिस्टर बेदाग था, अब उसमें धब्बे है। इस तारीख, इस दिन, इस समय ये दाग। बाबा के हाथ में किताब आएगी जीवन की, बहुत सारे पेजेस तो बहुत अच्छे हैं, वाइट है, पर बीच में धब्बा दिखेगा, उसका वर्णन नीचे लिखा है। हम कहेंगे ये मैं नहीं था, तो बाबा के पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, पहले ऑडियो। तुम कहोगे ये मेरा आवाज ही नहीं है, तो बाबा कहेंगे वेट, अभी वीडियो दिखाएंगे तुमको, ये तुम ही थे। तो रजिस्टर पर काला दाग, और यदि लगे हुए है तो अब रोना है थोड़ा सा, पश्चाताप करना है थोड़ा सा, दुखी होना है थोड़ा सा, क्यों लगा, कैसे लगा, अब नहीं लगने दूंगा। पहले थोड़ा सा पश्चाताप का भाव आना चाहिए, उसके बाद ही परिवर्तन होगा, नहीं तो अपने आप को माफ किए हुए और आगे बढ़ रहे कि हमने तो कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, हमसे बड़े बड़े पापी तो यहां घूम रहे हैं। हम तो वो क्या कहते हैं बाबा, सीता के लिए और जनक के लिए कौन सा शब्द आता है? सीता और जनक के लिए अनु, राधा और जनक के लिए अनुराधा, अनुराधा ना, तो छोटा अनु आता है ना, अनु या दूसरा है कोई, अनु है शायद, अनुराधे, अनुजनक। तो हम तो बहुत छोटे हैं, मिडगेट, हमारे पाप छोटे हैं, बड़े पापियों के तो यहां अंबार लगे हुए हैं। जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, पर दाग लगे हैं तो जागरण चाहिए कि मिटाना है, सारे पाप धुल जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए। उसके लिए तपस्या की आग को तीव्र करना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि, कौन सी अग्नि? विकारी भोग भोगने की आग है, आग, पैशन, वासना तीव्र है, जो फोर्स उसमें है बहुत भयंकर है, वो क्या कर देता है, पिछले पुण्य को भस्म कर देता है। अच्छे अच्छे पुण्य, बड़े बड़े पुण्य, सेवा के पुण्य, तप के पुण्य, वाणी के सेवा के पुण्य भस्म। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह पांचवी मंजिल से गिरने की बात है। फिर क्या होगा, पांचवी मंजिल से नीचे। क्रोधी को यह नहीं कहा जाता है पांचवी मंजिल से गिरा, क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता है पतित, क्रोधी के लिए नहीं कहा जाता है मुंह काला किया, क्रोधी के लिए कहा जाता है मुंह लाल किया, ये सब। और बाप किस लिए आए, पतित को पावन बनाने के लिए, क्रोधी को निक्रोधी अक्रोधी बनाने के लिए बाद में आए हैं। पहले किस लिए आए हैं, पतित पावन उसका नाम है, एक ही काम करने को आया है। कई बच्चे अब तक अलबेले के मन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते, वर्णन भी ऐसे साधारण रूप से करते कि मैंने तो चार पांच बार यह किया, आगे नहीं करूंगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, सहज कहते, सहज भाव से कहते, आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, कल रात में थोड़ा लेट सोया ना, आज मेरा अमृत वेला ऐसे थोड़ा नींद में चला गया, आज मुरली मेरे पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिला, क्या था, अच्छी थी क्या, हाँ ये तो बातें मुझे पता है। अंदर में लक्ष्य रखता है, रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा, अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। साधारण रीति से लिया, सारे दिन भर मुरली का चिंतन चलता रहे, हम तो सेवा इतनी थी हमको, हम मुरली का चिंतन कब करें, हमारी कर्मना सेवा इतनी ज्यादा है कि ये सब करने के लिए तो टाइम ही नहीं, ये हम पहले करते थे जब सेवाएं कम थी ना तब। लेकिन फिर भी आज ऐसो को बाबा क्या कह रहे हैं, नाम सुनो, ऐसे पाप आत्मा, ज्ञान की ग्लानी करने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं, ये ज्ञान की ग्लानी है। कौन सी ज्ञान की ग्लानी, कि हमने तो थोड़ा ही कर लिया, हमने ऐसे तो एक बार हुआ, सभी करते हैं, पर चिंतन थोड़ा सा तो कर लिया, सब लोग बैठे थे आंगन में, हम भी उनके साथ चले गए और परचिंतन में लग गए, किसने क्या किया, कौन क्या करता है, कौन कैसा है, उन्होंने भी तो किया, वो तो हमसे ज्यादा ज्यादा बोल रहे थे, हम तो खाली बैठे थे, कुछ बोला भी नहीं, खाली सुना, और दूसरों को सुनाया भी नहीं, सुना तो भी क्या, रोमिंग की तरह है। पर चिंतन, पैसे तो कटेंगे, सुना क्यों, उठाया क्यों फोन, हां में हां मिला रहे, अर्थात हम मान रहे हैं हां, वो जो दूसरी आत्मा है वैसी है, और हमको क्या पता उस आत्मा के विषय में, किसी के विषय, किसी का न्यायाधीश बनने की हमें किसने सर्टिफिकेट दिया है कि तुम बैठकर ये निर्धारण करो, ये निर्धारित करो कि वो अमृत वेला सोता है कि नहीं सोता है, तुम्हें किसने चौकीदार बनाया है, पहरेदार बनाया है उसका, यू आर नॉट इंस्पेक्टर ऑफ अदर्स, यू आर नॉट जज ऑफ अदर्स, जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, जज नहीं करो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा, तुम जज करोगे तो तुम्हें भी वैसा ही जज किया जाएगा। ज्ञान की ग्लानी करने वाले, ये चिंतन का विषय है, ज्ञान की ग्लानी अर्थात क्या, इस पर सोचना है सबने, ज्ञान की ग्लानी करना अर्थात क्या करना, बाप की ग्लानी करना तो सुना है, पर ज्ञान की ग्लानी करना अर्थात क्या। तो ज्ञान की ग्लानी करने वालों को बाप दादा वार्निंग दे रहे, वार्निंग अर्थात एक होता है समझ, एक होता है एडवाइस, एक होता है सजेशन, एक होता है सुझाव, एक होता है मैं बता रहा हूं, बाप बताते हैं, बाप सजेस्ट करते हैं। एक होता है देखो अगर होता है तो जितना हो सके बाप से याद करो, बाप को याद करो। एक होता है ऑर्डर, बाप की आज्ञा है। एक होता है फरमान, एक होता है ऑर्डिनेंस, एक होता है आदेश, एक होता है हुक्म, एक होता है सावधानी, कॉशन, अटेंशन, और ये क्या है, चेतावनी देते हैं बाप। चेतावनी कब देते हैं? लास्ट में चेतावनी दी जाती है। चेतावनी अगर वो नहीं किया अर्थात अरेस्ट वारंट, पहले 2-3 वारंट भेजते हैं और लास्ट में अरेस्ट वारंट भेजा जाता, तब तो जाना ही पड़ता है, सब जाना ही पड़ता है कोर्ट में। तो वार्निंग देते हैं, कौन सी ग्लानी? आज से इस ग्लानी को कड़ी भूल समझकर। क्या समझना है इसको? कड़ी भूल। पहले मानो तो, जब ये कहेंगे कि हमारी दुर्गति हुई है तभी सदगति का मार्ग दिखेगा। आज की मुरली में मार्ग, रास्ता, सही रास्ता दिखाने वाला एक बाप ही है, और कोई मार्ग नहीं दिखा सकता, गाइड वही है। भूल समझकर, कौन सी भूल है? कड़ी भूल समझकर, यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे। कल बताया था या सुबह बताया था आज, वो मुस्लिम फकीर के विषय में इधर बताया था? नहीं ना, वो कहता है मैं 30 साल से इधर बताया था ना, तो इतने समय से मैं, इतनी सी भूल थी। क्या भूल थी? कि घर जल रहा था और मैंने कहा मेरा नहीं जला। महसूस था कितनी गहरी है, मतलब आज सुबह भी महसूस था के विषय में कुछ कहा है साकार मुरली, एक शब्द आया है, क्या था? तो कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगे, तो स्वयं की चेकिंग करनी है, आत्मनिरीक्षण करना है। पांच बातें फिर से सुना रहे हैं। यदि किसी में संकल्प से फंसते हैं, स्वप्न से फंसते हैं, या देह रूपी सांप को स्पर्श करते हैं, तो पांच बातें होगी। पहली, पुण्य समाप्त, कमाई समाप्त। दूसरा, रजिस्टर पर दाग कलंक। तीसरा, कमाई खत्म। चौथा, ऊपर से धड़ाम से नीचे, फिर उठना, और उठाने वाला कोई ना मिला तो लंबा समय नीचे गिरा रहता है व्यक्ति। हमने देखा है MBBS में ऐसा होता था कि जो पास हो जाते थे वो पास हो जाते थे, और जो फेल हो जाते थे फिर उनको बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई करके पास होने की इच्छा खत्म हो जाती थी, क्योंकि फेल होने का डिप्रेशन ही इतना ज्यादा होता था कि इच्छा ही नहीं होती थी कि आगे पास भी हूं। ऐसा होता है, बड़े बड़े भी धराशायी हो जाते हैं। दुख ही इतना ज्यादा होता है कि हम गिर गए, आत्मग्लानी का भाव, और उसके बाद में पुरुषार्थ ही नहीं करते। इसके लिए सबसे पहले तो गिरना ही नहीं है, और गिर अगर गए और गिरे हुए हैं, यदि दाग लगा हुआ है, तो फिर अभी श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग करना है, उन पुरुषार्थी, उन आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का संग जो पुरुषार्थ से पूर्ण रूप से मुक्त है, और गिराएगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, पढ़ाई पर है, आज भी कहा सुबह, उन्हीं आत्माओं का संग करना जो ज्ञान और योग में डूबे हुए हैं। और पांचवी बात, कड़ी सजा, सीवियर पनिशमेंट, और वो सजा कहां मिलेगी? सजा कहां मिलेगी? यही स्थिति का गिर जाना ही दंड है ब्राह्मण जीवन में। अमृत वेला मिस होना, अमृत वेला उठना कोई अनुभव नहीं, अमृत वेला उठना और नींद, अमृत वेला उठना और आलस्य, अमृत वेला उठना और अतीन्द्रिय सुख नहीं होना, अमृत वेला उठना और शरीर से डिटैच होने का कोई अनुभव नहीं, अमृत वेला उठना और अमृत वेला करने के बाद आत्मा में आहा फीलिंग, आहा मोमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, हिप हिप हुर्रे मोमेंट्स अगर नहीं आ रहे अमृत वेले के बाद, तो जरूर कोई ना कोई अवज्ञा की है। जरूर कुछ ना कुछ पाप और विकर्म गुप्त रीति से हो रहे हैं, कुछ कुछ अवज्ञाएं हो रही है। यदि मुरली में रस नहीं, मुरली का चिंतन नहीं, मुरली का चिंतन होना ही बंद हो गया, दिमाग भारी है, भरा हुआ है व्यर्थ से, ये सब होगा, ये सब दंड है। सेवा कर रहे पर उमंग नहीं, सेवा कर रहे पर उदासी है, सेवा कर रहे पर सफलता नहीं, दंड है। टाइम पास हो रहा है, संबंधों में झगड़े हैं, कड़वाहट है, संतुष्टता का भाव नहीं, दंड है। और फिर ये सब जब हो रहा है तो व्यक्ति अंदर जो खालीपन है उसको भरता है, किससे भरता है, भोजन से। पर कितना भी खाओ आत्मा रिक्त ही रहती है, क्योंकि आत्मा किसी भोजन से आत्मा की प्यास भरने वाली नहीं है। आत्मा की प्यास अनंत की है, अनंत को अनंत ही भर सकता है, कोई देहधारी नहीं, कोई शरीरधारी कभी नहीं भर सकता उसको। तो ऐसी ये पांच बातें याद रखनी है, और सार रूप में किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसना नहीं। ॐ शान्तिः।